अनोखी है, अनमोल है, सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ, अब नानी हमें सुनाएंगी,
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ, क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
देखो देखो नानी, ये बिट्टू अकेले अकेले एप्पल खा रहा है, हमें नहीं दे रहा।
बिट्टू तुम्हें बांट कर खाना चाहिए।
मगर नानी ये मेरा एप्पल है।
जानती हूँ बिट्टू, मगर अच्छे बच्चे अपनी चीजें शेयर करते हैं, और अगर तुम तुम्हारा एप्पल सबके साथ शेयर करोगे तो मैं तुम्हें आज एक जादुई सेब यानी कि मैजिकल एप्पल की कहानी सुनाऊंगी।
ओ रियली नानी, फिर तो मैं अपना एप्पल जरूर शेयर करूंगा।
सुनाओ ना नानी, जादुई एप्पल की कहानी सुनाओ ना।
अच्छा तो सुनो, एक बार एक राजा शिकार करने के लिए निकला और शिकार करते करते एक जादुई नगरी में पहुंच गया। बहुत खूबसूरत नगरी थी वो, वहाँ बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ थे, अच्छे अच्छे मकान थे और एक बहुत ही खूबसूरत सेब का पेड़ भी था।
उसमें तो बहुत से एप्पल लगे होंगे ना नानी।
हाँ बच्चों, बहुत से एप्पल लगे थे। राजा को वो जगह बहुत पसंद आई। अचानक राजा को वहाँ एक खूबसूरत हिरन भी दिखा, और जैसे ही राजा को हिरन दिखा, राजा ने अपना तीर निकाला और हिरन पर चला दिया, और हिरन घायल हो गया। मगर जैसे ही राजा वो घायल हिरन के पास गया, उसने देखा कि हिरन तो वहाँ है ही नहीं, वो तो गायब हो गया।
गायब हो गया?
हाँ, राजा को ये बात समझ ही नहीं आई, और फिर वो समझ गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उसने अपने राज्य वापस लौटने का फैसला किया, और लौटते वक्त उसने उस खूबसूरत सेब के पेड़ से कुछ सेब तोड़े अपने बेटों के लिए, और घर की ओर लौटने लगा। जब चलते चलते राजा को बहुत भूख लगी तो उसने एक सेब खा लिया। इतना स्वादिष्ट सेब राजा ने कभी नहीं खाया था। उसने सोचा कि उसके दोनों बेटे ये सेब खाकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही वो अपने महल पहुंचा, उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया, और जैसे ही उसने अपने जेब में सेब निकालने के लिए हाथ डाला, उसे पता चला कि सेब तो वहाँ है ही नहीं।
कहाँ गए वो सेब नानी?
राजा ने भी यही सोचा कि सेब तो उसने अपनी जेब में रखे थे, फिर कहाँ चले गए? उसके लाए हुए सेब गायब हो गए थे, और राजा के दोनों बेटे राजा के सामने चुपचाप खड़े थे और ये सोच रहे थे कि बाबा ने उन्हें वहाँ क्यों बुलाया है। राजा ने जैसे ही उनसे बात करनी चाही, राजा की आवाज ही नहीं निकली। राजा की लाख कोशिशों के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा के बड़े बेटे को अपने बाबा की ये तकलीफ समझने में जरा भी समय नहीं लगा, और उसने फौरन वैद्य को बुलावा भेजा। कई दिनों तक राजा का इलाज चलता रहा। दुनिया भर के वैद्य आए, मगर कोई भी राजा की इस तकलीफ को दूर न कर सका। राजा के दोनों बेटे बहुत उदास रहने लगे। अपने बाबा की आवाज सुनने के लिए वो जैसे तरस गए थे। फिर एक दिन राजा का बेटा सिकंदर, जो झील के किनारे उदास बैठा हुआ था, कि उसे एक बूढ़े आदमी ने अपने पास बुलाकर कहा, बच्चा मैं जानता हूँ कि तुम इतने उदास क्यों हो, मगर तुम्हारी उदासी दूर करने का मार्ग है मेरे पास, मगर वो मार्ग बहुत ही कठिन है, क्या तुम सुनना चाहोगे?
हाँ नानी, हम सुनना चाहेंगे।
बच्चों, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने राजा के बेटे से कहा। सिकंदर अपने हर हाल में अपने बाबा की आवाज वापस लाना चाहता था। वो बूढ़े आदमी की हर बात मानने को तैयार हो गया। तब बूढ़े आदमी ने उससे कहा, जब राजा जी शिकार पर गए थे तब वो वहाँ से तुम्हारे लिए और तुम्हारे छोटे भाई के लिए ढेर सारे सेब लाए थे और रास्ते में उन्होंने उन सेब में से एक सेब खा लिया था और यहाँ आने पर वो सारे सेब गायब हो गए थे और साथ में तुम्हारे बाबा की आवाज भी ले गए। सिकंदर ये सुनकर हैरान हो गया कि सेब खाने से आवाज कैसे चली गई। तब उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो सभी सेब जादूगर समरी के बाग के थे और उस पेड़ पर लगे थे जिसमें उस जादूगर की जान बसती है। जादूगर ने सजा के तौर पर राजा की आवाज छीन ली थी और वो तभी वापस आ सकती है जब जादूगर के उस पेड़ को जला दिया जाए। मगर ऐसा करना आसान नहीं था। जादूगर समरी की नगरी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। पर शहजादे को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि मैं हर हाल में उस पेड़ को जलाऊंगा और अपने बाबा की आवाज वापस लाऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने सफर पर निकल गया और अपने छोटे भाई को बाबा की देखभाल करने के लिए छोड़ गया। कई दिनों के सफर के बाद शहजादा जादुई नगरी में पहुंच चुका था। वहां की खूबसूरती देखकर शहजादे की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ देर वहां घूमने के बाद शहजादे को एक झोपड़ी दिखी और जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। उस औरत ने कहा, अंदर आ जाओ शहजादे। औरत की आवाज सुनकर वो झोपड़ी के अंदर चला गया मगर उसे वहां कोई नहीं दिखा। शहजादा समझ गया कि उसकी मुश्किल अब शुरू हो गई है। उसने बिना डरे उस बूढ़ी औरत को सामने आने के लिए कहा और जैसे ही बूढ़ी औरत उसके सामने आई उसने शहजादे पर हमला कर दिया। मगर शहजादे ने उस औरत पर हाथ नहीं उठाया। जब बूढ़ी औरत ने उससे पूछा कि तुम मुझसे लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तब शहजादे ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। बूढ़ी औरत समझ गई कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है और उसने तुरंत शेर का रूप ले लिया।
नानी, अब तो वो शेर बनके खा जाएगी।
नहीं बच्चों, हमारा शहजादा उस शेर को हराने में कामयाब हो जाता है। अपनी हार स्वीकार करने के बाद शेर फिर बुढ़िया के रूप में आ जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुई शहजादे, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। ऐसा कहकर वो बुढ़िया उसे एक अनार देती है। उस अनार में जिन रहता था।
जिन?
हाँ बच्चों, एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली जिन। बूढ़ी औरत ने शहजादे को ये जिन उसकी बहादुरी के तोहफे के तौर पर दिया ताकि वो जिन की मदद से अपनी मंजिल जल्द से जल्द हासिल कर सके। अब बूढ़ी औरत उसे वो जिन देकर वहाँ से गायब हो जाती है और शहजादा अपने सफर में आगे बढ़ता है। कई दिनों तक शहजादे को जब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता तब वो अनार से जिन को बाहर बुलाता है और जिन को अपने वहां आने का मकसद बताता है। जिन अपने मालिक की बात सुनने के बाद उनसे कहता है, मेरे मालिक, मैं आपको जादूगर की नगरी के पास तक ही ले जा सकता हूँ क्योंकि उसकी नगरी में मुझे जाने की इजाजत नहीं है और अगर मैंने ऐसा किया तो वो जादूगर मुझे मार डालेगा। शहजादा इस बात से राजी हो जाता है और जिन को उसे वहां ले जाने का हुक्म देता है और तब जिन उसे कहता है, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका गुलाम, लेकिन मेरे मालिक, अभी वहां जाने में ज्यादा खतरा है। हमें वहां 4 दिन के बाद जाना चाहिए क्योंकि उस दिन जादूगर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सोया हुआ रहता है।
तो क्या वो जिन की बात मान लेता है नानी?
हाँ बच्चों, मगर उसके लिए एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था। चार दिन के कठोर इंतजार के बाद जिन उसे अपनी जादुई कालीन पर बिठाकर जादूगर की नगरी ले जाता है। शहजादा उस जादुई नगरी में जाने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और जिन वहीं रुककर उसके लौट आने का इंतजार करता है। बहुत देर तक चलने के बाद जैसे ही रास्ता खत्म होता है, शहजादा जादू से वहीं लौट जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। ऐसा बार बार होने पर भी वो हार नहीं मानता और चलता रहता है। और एक दिन कुछ सिपाही उसे पकड़कर एक परी के सामने पेश करते हैं। शहजादा उस परी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उस जालिम जादूगर ने परी की बहन को भी कैद करके रखा हुआ था। परी शहजादे को उस सेब के पेड़ तक पहुंचाने का रास्ता बताती है और कहती है,
शहजादे, आप उस पेड़ को जलाने से पहले वहाँ का एक फल तोड़कर वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति की आंखों में डाल देना। वो पत्थर की मूर्ति मेरी बहन की है और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी बहन आजाद हो जाएगी।
शहजादा उसे वचन देता है कि वो उसकी बहन को जरूर आजाद करवाएगा। परी से सेब के पेड़ तक जाने का रास्ता जानने के बाद वो अपने सफर पर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो सेब का पेड़ दिखता है, मगर उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उसे एक तालाब से गुजरना पड़ता है और उस तालाब में ढेर सारे मगरमच्छ होते हैं। शहजादा समझ जाता है कि बिना मगरमच्छों का ध्यान भटकाए वो ये तालाब पार नहीं कर पाएगा। उससे एक आइडिया आता है। वो एक हिरन का शिकार करता है और उस हिरन को तालाब में फेंक देता है, और जैसे ही सब मगरमच्छ उस हिरन को खाने लगते हैं, वो तुरंत तालाब में कूदकर उसे पार कर लेता है। और जैसे कि परी ने उसे बताया था, वो पहले एक फल तोड़ता है, उसका रस उस पत्थर की मूर्ति में डालता है और उस सेब के पेड़ में आग लगा देता है।
वाओ नानी, आखिर में शहजादे ने ये कर दिखाया।
हाँ बच्चों, और जैसे ही वो पेड़ जलने लगता है, जादूगर की सारी जादुई नगरी गायब हो जाती है और शहजादे के बाबा की आवाज भी लौट आती है। शहजादा परी का शुक्रिया अदा करता है और जिन को अपनी गुलामी से आजाद करके अपने महल लौट जाता है, जहां सभी उसका बहुत जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, बहादुर शहजादे की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि अपनों की हेल्प के लिए हमें हर चुनौती से लड़ना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी?
बहुत अच्छी नानी, एक और सुनाओ ना प्लीज।
आज नहीं, अब अगली कहानी बाद में। ये है ना।